27 जनवरी दिन भर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदल। दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद शुरू हुए छात्र आंदोलन की दस्तक अब दिल्ली में भी।
जब इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही है, एम्स के भीतर हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, कर्नाटका में हो रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
होगी चर्चा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की।
ये सब कुछ इतना स्पॉन्टेनियस हुआ कि उनके पास इतना मौका ही नहीं था कि वो एक ब्लूप्रिंट या एक अल्टरनेटिव तैयार रखे।
और दुनिया जहान में देखेंगे कि किस तरह सिर्फ 5 सालों में अरब बसंत सर्दी में तब्दील हो गया। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के 10 दिन बाद भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी दिल्ली में आज विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र बड़ी संख्या में जुटे और उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्र रोहित की मौत के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और कुलपति अप्पा राव पोडिले का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के वकील से उस रिपोर्ट को पेश करने के लिए कहा है जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और शुक्रवार तक इसका जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये में बदलाव का जिम्मा अमरीका का है। फ्रांस रवाना होने से पहले रोम में हसन रूहानी ने कहा कि यूरोप के साथ ईरान के संबंधों में तल्खी रही है, लेकिन अमरीका चाहे तो संबंध सुधार सकता है। ऐसे संबंध संभव हैं जिनमें दुश्मनी ना हो, तनाव ना हो और इसकी कुंजी अमेरिका के हाथों में है। तनाव दूर करना मेरे हाथ में नहीं, हमें दुश्मनी को एक तरफ करने की जरूरत है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की जस्टिस मंत्री क्रिस्टियाने तोबीरा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चरमपंथी गतिविधियों में दोषी पाए गए लोगों की नागरिकता समाप्त करने संबंधी बिल पर सांसदों की बहस से ठीक पहले इस्तीफा दिया है। फ्रांस की जस्टिस मंत्री इस विवादास्पद प्रस्ताव से सहमत नहीं थीं। पिछले साल नवंबर में पेरिस पर चरमपंथी हमले के बाद इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि पश्चिम के अधिकतर देशों ने चरमपंथी हमले के खतरे और शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए लोगों की बुनियादी आज़ादी का अतिक्रमण किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों की निंदा की है। जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन में बीते साल उत्सर्जन मानकों में धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद अब यूरोपीय आयोग ने उत्सर्जन की जांच के तौर तरीके में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग के अधिकारी इस बदलाव के जरिए कार बनाने वाली कंपनियों और उनका परीक्षण करने वाली कंपनियों के बीच वित्तीय सांठगांठ को तोड़ना चाहते हैं। अमेरिका और चीन ने इस बात पर सहमति जताई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उत्तर कोरिया के खिलाफ और कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए इस पर दोनों देशों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ये मतभेद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की बीजिंग यात्रा के दौरान उभर कर सामने आए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के बाद 10 दिन पहले शुरू हुआ छात्रों का विरोध अब भारत की राजधानी समेत कई शहरों में फैल गया है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों में तो कई छात्र संगठनों ने हड़ताल का आह्वान भी किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक पदयात्रा निकाली। विरोध कड़ा होने के बाद सरकार की ओर से रोहित के परिवार को मुआवजे की घोषणा भी की गई थी, पर छात्रों के मुताबिक ये नाकाफी है। वो सरकार के रवैये को असंवेदनशील बताते हैं और कहते हैं कि सबसे अहम है कि उन अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जिनकी वजह से आत्महत्या को मजबूर होने की नौबत आई। विस्तृत जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग विश्वविद्यालयों से छात्र आज जुटे हैं और चल रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ अपनी मांगे लेकर, जिसमें स्मृति ईरानी का अपनी कुर्सी को छोड़ना एक बहुत ही अहम मांग है।
दिल्ली के अलग अलग बस्तियों से, वाल्मीकि बस्तियों से, धोबी बस्तियों से, मुसहर टोली से, चमट टोली से, हर जगह से हम लोग आए हैं और हम ये बात यहाँ लेकर आए हैं कि जो रोहित के साथ हुआ है वो पहली कोई घटना नहीं है। हम बथानी टोला से, भगाना से लेकर रोहित तक आज पहुँचे हैं और आज भी अगर समाज में इस तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लाखों दलित, लाखों मेहनतकश इस सड़कों पर आएंगे और इस सरकार को बता देंगे कि उनका स्ट्रेंथ क्या है।
इतनी सारी घटनाएं हुई हैं दलित शोषण की, उसके बावजूद भी इस सब घटनाओं के बाद बीजेपी सरकार के जिस तरह के कमेंट आते हैं, उनके मंत्री जिस तरह के कमेंट देते हैं, बहुत ही निंदनीय है। वो क्यों ऐसी बातें करते हैं कि एक कुत्ता मर जाता है तो दुख होता है या हर कुत्ते की मौत पे हम जवाब देंगे, जैसा वीके सिंह का बयान आया था फरीदाबाद की घटना के बाद।
पिछले दिनों जब हम ऑक्यूपाई यूजीसी के तहत अपने फेलोशिप के डिमांड के लिए यहाँ पे दिल्ली की सर्दी में हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, एक शब्द भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी और अभी तक उसकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। जिस पर जब इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही है, एम्स के भीतर हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, कर्नाटका में हो रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू अ प्रोटेस्ट एंड स्टूडेंट्स लाइक कमिटिंग सुसाइड इज सच अ बिग थिंग। So we are all students and in like we
it
are in this yeah it can happen to us also. So
आप केरल से आई हैं, JNU में पढ़ाई कर रही हैं और आप ये कह रही हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे किसी जानने वाले के साथ नहीं हुआ, फिर भी मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं इसका विरोध करूं क्योंकि एक छात्र ने आत्महत्या की है।
10 दिन पहले 17 जनवरी को दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद हैदराबाद में छात्रों ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी का अब गठन किया है। इसी के तहत वो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों में छात्रों को जुटाकर प्रदर्शन आयोजित करवा रहे हैं। मुंबई के कई विश्वविद्यालयों से जमा हुए छात्रों ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास मौजूद अम्बेडकर की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद ठाणे के जिला कलेक्टर के दफ्तर तक मार्च किया।
मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, कल उधर हुआ, आज मेरे साथ ऐसा होगा। तो ये सब मतलब आप देख रहे हैं कि हर एक जन दलित स्टूडेंट पे जितना अन्याय कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये मोर्चा में शामिल
हूँ। किसी मतलब यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज स्कूल में जातिवाद के मुद्दे पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए कि उसमें किसी मुझे राजनीतिक पार्टी का कोई रोल ना हो, किसी के ऊपर दबाव ना हो या प्राध्यापक हो या स्टूडेंट हो।
उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कई जगहों पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए, हालांकि इसमें मुख्य रूप से वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्रों की ही भूमिका रही।
यूनिवर्सिटी में यहाँ पे सारे लेफ्ट के लोग, जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन है, वो सारे एकजुट होकर यहाँ प्रोटेस्ट किए। MHRD मिनिस्टर और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का यहीं पुतला फूंका गया।
हैदराबाद विश्वविद्यालय की जो घटना है खासतौर से एक खास वर्ग के तबके की, एक खास वर्ग की प्रति मानसिकता को दर्शाता है कि समाज का एक तबका, एक समाज के पिछले तबके के पीछे किस तरह से सोचता है, खासतौर से उच्च पदों पर बैठे हुए लोग।
हैदराबाद में लगातार हो रहे विरोध के चलते कुलपति प्रोफेसर अप्पा राव पोडिले अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए हैं और प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव ने अंतरिम कुलपति का पदभार संभाला है, पर छात्र इस नियुक्ति का भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर श्रीवास्तव उस कार्यकारी काउंसिल के मुखिया रह चुके हैं जिसने रोहित वेमुला और अन्य चार छात्रों को निलंबित किया था। 30 जनवरी को रोहित का जन्मदिन है और अब कई छात्रों के दिल्ली में एकत्रित होकर उस दिन बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। मुंबई से आयुष देशपांडे और लखनऊ से समीरात्मज मिश्र के साथ दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
उधर दक्षिण भारत में भी हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई विश्वविद्यालय बंद रहे। 17 जनवरी को PhD विद्यार्थी रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद से इस इलाके में प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। छात्र अंतरिम कुलपति विपिन श्रीवास्तव को हटाए जाने और उनके पूर्ववर्ती और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को भी हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या के 10 दिन बाद भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में आज कुछ अन्य विश्वविद्यालय बंद रहे। बंद रहने वाले ज्यादातर विश्वविद्यालय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों के मुताबिक यूनिवर्सिटी बंद सफल रहा। तेलंगाना के करीम नगर के शतवाना विश्वविद्यालय के बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन के जनकपल्ली गणेश कहते हैं,
आज करीमनगर में और शतवाना यूनिवर्सिटी में शतवाना यूनिवर्सिटी के अनुबंध कॉलेज स्टूडेंट्स लोग पूरा क्लासेस बैकट करके बाहर आया। आने के बाद में शतवाना यूनिवर्सिटी के प्रधान द्वार के उधर खड़े रह के सेंट्रल गवर्नमेंट का दृष्टि बम्बा को दहन किया। उधर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल ज्वाइंट एक्शन कमिटी का कार्यक्रम आज सक्सेस हुआ।
विरोध प्रदर्शन सिर्फ विश्वविद्यालयों में सीमित नहीं रहा। चेन्नई में रेवोल्यूशनरी यूथ फेडरेशन भी सड़क पर उतरा। RYF के संयोजक दिलीपन कहते हैं, विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि दलितों को अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। हम छात्रों का समर्थन करते हैं। ये थे दिलीपन के शब्द। 17 जनवरी को रोहित विमला ने विश्वविद्यालय के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। रोहित और उनके 4 साथियों को विश्वविद्यालय के हॉस्टल से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद रोहित ने आत्महत्या कर ली थी। उनको निलंबित करने का कारण यह था कि उन्होंने BJP से जुड़े छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता के साथ हाथापाई की थी। इसके फौरन बाद केंद्रीय मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने HRD मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी थी कि वह इन छात्रों पर कार्रवाई करें। कुलपति के छुट्टी पर जाने के बाद जिन्हें अंतरिम कुलपति बनाया गया वो वही हैं जिन्होंने इन छात्रों को निलंबित किया था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष जुहेल KP कहते हैं, हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हमारी ये भी मांग है कि अंतरिम कुलपति प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव को निकाला जाए। पहले उनको निकालने दो, फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी निर्णय लेगी यह हड़ताल को आगे चले कि नहीं। ये थे जुहेल के शब्द। इस मामले में अभी भी गतिरोध बना हुआ है क्योंकि अंतरिम कुलपति के साथ कोई छात्र संगठन बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के टीचर्स एसोसिएशन भी अंतरिम कुलपति प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव के समर्थन में नहीं है। जाहिर है कि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आज सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान बहस काफी नाटकीय रही। 1.5 घंटे चली इस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस घटना पर नजर रखी है हमारे साथी जुबैर अहमद ने, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान पार्टी की वकालत करने वालों में देश के 3 बेहतरीन वकील यानी फाली नरिमन, कपिल सिब्बल और राजीव धवन आगे आगे थे, जबकि केंद्रीय सरकार और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की तरफ से बहस करने आए थे अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर हरीश साल्वे। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ज्योति प्रसाद राजखोवा का केस लड़ रहे थे सत्यपाल जैन। और फिर आज की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों पर निर्धारित एक संवैधानिक बेंच के सामने। सुनवाई के दौरान बेंच ने गवर्नर के वकील से नाराजगी जताई कि राज्यपाल की तरफ से कोर्ट को सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने पूछा, किन हालातों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये जानकारी हमारे लिए जरूरी है, 15 मिनट में रिपोर्ट लेकर आइए। राज्यपाल के वकील सत्यपाल जैन ने 1 दिन का वक्त मांगा, लेकिन अदालत ने कहा कि इसके लिए आपको अरुणाचल की राजधानी ईटानगर जाने की जरूरत नहीं, ईमेल से मंगाइए। और जब सुनवाई खत्म हुई तो श्री जैन ने खुद ही कहा, मैंने राज्यपाल से वो रिपोर्ट्स मांगी हैं क्योंकि मैं अदालत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और जैसे ही वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी हम उनकी फोटोकॉपी एक सील बंद लिफाफे में जजों को पेश कर देंगे। जजों के संवैधानिक बेंच ने कहा कि ये रिपोर्ट्स शुक्रवार तक पेश हो जाने चाहिए। इस पर गवर्नर के वकील ने कहा, मैंने कहा ये गोपनीय रिपोर्ट्स हैं, ये भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल और गवर्नर के लिए हैं, ये प्राइवेट संचलन के लिए नहीं है और इन्हें विरोधी पक्ष को नहीं दिखाना चाहिए। यह थे शब्द गवर्नर के वकील सत्यपाल जैन के। बहस के दौरान जब केंद्रीय सरकार का पक्ष कमजोर पड़ता दिखाई देने लगा तो अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भागे भागे अदालत आए और जजों से कहा कि कांग्रेस की याचिका सोमवार को दाखिल की गई और राष्ट्रपति शासन तो मंगलवार को लागू हुआ तो ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के वकीलों ने कहा कि उनकी याचिका राष्ट्रपति शासन के बजाय केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले के खिलाफ है और ये फैसला रविवार को लिया गया था। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री नाबाम तुकी भी आज दिल्ली में मौजूद थे।
अगर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मांगा है तो गवर्नर से मांगने के बाद में क्या देता है उसके बाद फिर हम लोग पता करेंगे क्या क्या रिपोर्ट देगा। वी हैव एक्सपेक्टिंग जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश में पिछले महीने से राजनीतिक संकट चल रहा है। राज्य में 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग की थी। श्री तुकी ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल राजखोवा भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा इस इल्जाम को खारिज करते हुए कहती है कि कांग्रेस को संविधान की और गवर्नर जैसे अहम ओहदे की कदर करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर कई विपक्षी नेताओं ने भी इसकी आलोचना की है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। फ्रांस की न्याय मंत्री क्रिस्टियन टोबीरा ने फ्रांस सरकार के एक विवादित प्रस्ताव के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस में दोहरी नागरिकता रखने वाले ऐसे लोगों से फ्रांस की नागरिकता छीन लिए जाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है जो कि चरमपंथ के दोषी पाए गए हैं। फ्रांस में इस नए प्रस्तावित बदलाव को लेकर बहस छिड़ी है। जहां सरकार इसे चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विरोधी नागरिकता छीन लिए जाने के प्रस्ताव को समाज में भेदभाव बढ़ाने का कदम बता रहे हैं। BBC संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ हरिता कांडपाल।
फ्रांस की न्याय मंत्री क्रिस्टियन टोबीरा ने संविधान में बदलाव के एक प्रस्ताव के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। दरअसल फ्रांस में सरकार ने संविधान में बदलाव का एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके मुताबिक चरमपंथ के दोषी पाए गए दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों से फ्रांस की नागरिकता छीन ली जाएगी। पेरिस में नवंबर में हुए हमलों के बाद फ्रांस ने चरमपंथ के खिलाफ कमर कस ली है और इसी सिलसिले में सरकार संविधान में ये बदलाव करना चाहती है। इस्तीफा देने के बाद क्रिस्टियन टोबीरा ने ट्वीट किया कि कई बार पद पर रहते हुए विरोध जताया जाता है और कई बार पद छोड़कर विरोध जताया जाता है। पिछले महीने टोबीरा ने संविधान में बदलाव के प्रस्ताव की ये कहते हुए आलोचना की थी कि इससे चरमपंथ से लड़ने में कोई मदद नहीं मिलेगी।
Le mariage est donc oui un acte de liberté.
पेरिस में BBC के संवाददाता का कहना है कि फ्रांस में इस बात पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है कि क्या सरकार का ये प्रस्ताव उचित और व्यावहारिक है। बहस का एक मुद्दा ये भी है कि क्या इसे दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों पर ही लागू करना चाहिए। फ्रेंच गुयाना में जन्मी 63 साल की क्रिस्टियन टोबीरा फ्रांस के कुछ एक वरिष्ठ अश्वेत नेताओं में से एक है और 2012 में न्याय मंत्री बनने के बाद टोबीरा अक्सर विवादों से घिरी रही हैं। टोबीरा कई बार दक्षिणपंथी पार्टियों की तरफ से की गई नस्लभेदी टिप्पणियों का भी शिकार हो चुकी हैं। समलैंगिक शादियों से जुड़े कानून को लेकर दक्षिणपंथी पार्टियां उन्हें कई बार निशाना बनाती रही हैं। वैसे तो टोबीरा राष्ट्रपति ओला की सोशलिस्ट पार्टी में काफी लोकप्रिय नेता मानी जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से नागरिकता के इस मसले को लेकर पार्टी नेताओं से उनकी तल्खी बढ़ गई थी। फ्रांस में प्रस्ताव का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इससे फ्रांस के नागरिक और दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों के बीच दरार पैदा हो जाएगी। जहां दक्षिणपंथी पार्टी ने सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, वहीं प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स ने कड़े शब्दों में कहा था कि सरकार का ये कदम उन लोगों के खिलाफ कड़ा संकेत है जिन्होंने खुद को राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर लिया है। वहीं टोबीरा के इस्तीफे को स्वीकार करने की सूचना देते हुए फ्रांस सरकार के प्रवक्ता स्टीफन लेफोल ने कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की एकता बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा,
जो बहस चल रही है उसमें सामंजस्य होना जरूरी है। मंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि हर किसी की व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन फ्रांस की सरकार में शामिल मंत्री को एक सामूहिक निर्णय का हिस्सा बनना पड़ता है।
इस नए प्रस्ताव के अलावा फ्रांस की सरकार संविधान में आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार, घरों पर छापे मारने और न्यायिक निगरानी के बगैर नजरबंद करने के अधिकार से जुड़े बदलाव करना चाहती है।
फ्रांस के न्याय मंत्री का इस्तीफा। अचानक से उठे एक आंदोलन ने अरब जगत में ऐसी उथल पुथल मचाई कि लगा पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन 5 बसंत बीतने के बाद हालत यह है कि अब किसी को न तो वो नारे याद रहे, न वो तकरीरें जिन्होंने कभी दशकों से जमी हुई सरकारों को सत्ता से बाहर करने का मादा दिखाया था। 5 साल पहले का अरब वसंत अब अरब की सर्दी कहा जाने लगा है। दुनिया जहान में निखिल रंजन ने आज इसी पर रोशनी डालने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। पांच साल पहले ये आवाज ट्यूनिस की गलियों में किसी नारे की तरह गूंजी और मीठे सुरों की तान चिंगारी बनकर ट्यूनिशियाई दिलों में आग भड़काती चली गई। कई दशक से सत्ता पर काबिज बेन अली भूतपूर्व हुए। ठीक 1 महीने बाद ही आंदोलन की इसी आग ने नील नदी के पानी में वो नशा घोला कि तहरीर चौक पर जमा काहिरा के मतवाले लोग राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक की विदाई के बाद ही वहां से हटे। फिर तो पूरे अरब जगत में सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की आंधी चलने लगी। लीबिया, बहरीन, सीरिया, यमन, जॉर्डन और सऊदी अरब ही नहीं, क्रांति की ये आग इराक, कुवैत, मोरक्को और ईरान तक जा पहुंची। हर तरफ हाहाकार मच गया। सोशल मीडिया और पारंपरिक हथियारों से लैस युवाओं ने मानो सिर पर कफन बांध लिया था सत्ताधीशों को मिट्टी में मिलाने का। जहां शांति से काम बना वहां शांति से, और जहां जरूरत पड़ी वहां छोटे बड़े हथियारों से जोर आजमाइश होने लगी। बेन अली और मुबारक तो सुरक्षित सत्ता से बाहर गए, लेकिन गद्दाफी को तो उनके किले से बस कुछ ही दूरी पर धूल में मिला दिया गया। अरब देश में सरकारों के खिलाफ उठी इन आवाजों को दुनिया ने बड़ी उम्मीद से देखा और नाम दिया अरब वसंत। अब उसी क्रांति को अरब की सर्दी कहा जा रहा है, वो सर्दी जिसने अरब जगत को हालात के ऐसे कोहरे में घेर लिया है जिसके छटने की कोई सूरत नजर नहीं आती। 5 सालों में ही वसंत सर्दी में कैसे तब्दील हो गया? विदेश मामलों की भारतीय परिषद के सीनियर फेलो फजल रहमान।
जितनी सारी फॉल्ट लाइंस थी जो सिर्फ डिक्टेटरशिप ने अपने ऑटोक्रेसी, अपने सप्रेसिव ऑपरेटर्स के जरिए उसको दबा रखी थी, वो सारी फॉल्ट लाइंस उभर कर आ गई। वो फॉल्ट लाइंस थी एथनिक, वो फॉल्ट लाइंस थी पॉलिटिकल, वो फॉल्ट लाइंस थी सेक्टेरियन, वो फॉल्ट लाइंस थी रीजनल। इस सब जो पूरी अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है वो पूरी की पूरी उस फॉल्ट लाइन पे बेस है जो पिछले 5-6 डिकेड से उसको डिलिबरेटली एब्सेंट रखा गया था।
ट्यूनिशिया और लीबिया में अरब वसंत के बाद 2 बार चुनाव हुए हैं। मिस्र में 3 बार सरकार बदली। यमन में अली अब्दुल साले के बाद उनकी जगह आए मंसूर हादी को भी देश छोड़ना पड़ा, और सीरिया में असद के सत्ता न छोड़ने की जिद के कारण पूरा देश तबाही की कगार पर है। सीरिया न सिर्फ राष्ट्रपति असद, विद्रोहियों और इस्लामिक स्टेट का, बल्कि अमरीका, रूस, फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए भी अब जंग का मैदान है। यमन में सऊदी अरब ने सहयोगियों के साथ मिलकर धावा बोला। इस वक्त इलाके के ज्यादातर देशों में बेरोजगारी चरम पर है, कारोबार ठप हो रहा है, चरमपंथ अशांति और असुरक्षा का बोलबाला है, और सूनी आंखों से अरब उम्मीद के चिरागों को तबाही की लपटों में बदलते देख रहा है। आखिर कहां कमी रह गई?
पहली कमी ये थी कि रिवोल्यूशन बिल्कुल माइनस आइडियोलॉजी थी। इस पूरे रिवोल्यूशन की, चाहे ट्यूनिशिया में देखें, चाहे सीरिया में देखें, चाहे लीबिया में देखें, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। दूसरी जो कमी थी कि इसके लिए कोई, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। ब्लूप्रिंट जब ये कहते हैं तो ब्लूप्रिंट सब तक होता है जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट जब होता है तब आप साथ उसकी ब्लूप्रिंट तैयार रखते हैं। ये सब कुछ इतना स्पॉन्टेनियस हुआ कि उनके पास इतना मौका ही नहीं था कि वो एक ब्लूप्रिंट या एक अल्टरनेटिव तैयार रखें। इसलिए उनका पूरा का पूरा फोकस था कि प्रेजेंट रिजीम को बस जाना है। तीसरी इसकी कमी ये थी कि इसके लिए इस मूवमेंट के पास कोई लीडरशिप नहीं थी। चौथी इसकी कमी ये थी कि ये सारा का सारा मूवमेंट जो है शुरू तो हुआ था एक डोमेस्टिक अपहीवल था, लेकिन इसका जो रीजनल कैरेक्टर इतनी तेजी से बदला और उसके बाद जो ग्लोबल इंटरवेंशन, और इसने एक जो रीजनल कैरेक्टर जो इसने अडॉप्ट किया उसमें ये हुआ कि जो इंटरनल जो ग्रीवांसेस थी, जो अपनी हर कंट्री की अपनी एक एक्सक्लूसिव जो कैरेक्टर था, जो उनके ग्रीवांसेस थे, जो उसकी खासियत थी, वो सब मिक्सअप हो गई। तो ये 4-5 चीजों की कमी थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अरब वर्ल्ड में फिलहाल कुछ उसने अचीव नहीं किया।
बीते कई दशकों में दुनिया का कोई भी आंदोलन इस तरह सिर नहीं उठा सका जैसा अरब वसंत ने किया। लेकिन आधी सदी के ज्यादा वक्त से सत्ता पर काबिज शासकों ने इस विरोध की आंच में जब अपने किलों को ढहते देखा तो फिर इससे निपटने की उनकी बेचैनी ने वहां उन्हीं कारणों को उभारना शुरू कर दिया जिन्होंने सदियों से मध्य पूर्व को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इन सब के बीच जब इस्लामिक स्टेट के खिलाफत कायम हुई तो अरब में आए तूफान पर पश्चिमी देशों और अमरीका के लिए चुप बैठना मुश्किल हो गया। लंदन के किंग्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रोफेसर हर्ष विपंत,
जो सीरिया में पहले हो रहा था जबकि ये कहा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खासकर वेस्ट को और स्पेशली अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया था शुरू में। तो उसके बाद जो वहाँ की हालत बिगड़ती चली गई, जो लोकल शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता चला गया और उसके बाद एक ऐसी वो ऐसी समस्या बन गई जहाँ पर लोकल लीडरशिप ही ये कहने लगी कि अब आप इंटरवीन कीजिए, आप ही अमेरिका ही वॉशिंगटन से ही कोई समस्या का समाधान आ सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ये एक तरह से मजबूरी बन गई कि आपने लोकल लीडरशिप ने वहाँ की कोई रीजनल पावर्स ने चाहे वो सऊदी अरेबिया और ईरान हो उनको आपस में लड़ना ज्यादा जरूरी उन्होंने समझा इसके बजाय कि वहाँ का वो समाधान निकाल पाते। और जब समाधान नहीं निकल पाया तब उन्होंने फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा, फिर से खासकर वॉशिंगटन से कहा, अमेरिका से कहा कि आप फिर आइए और कुछ समस्या का समाधान कीजिए।
अरब के वसंत से बहारों को अरब में आना था लेकिन उसकी जगह जो मुश्किलें आई हैं उन्होंने पूरी दुनिया में घर बनाया है। कहीं बमों के धमाके हैं तो कहीं लड़ाकू विमानों की गूंज तो कहीं चरमपंथ का बोलबाला और कहीं शरणार्थियों की बाढ़। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस आपाधापी और शोर शराबे में वाजिब सवाल कहीं पीछे छूट रहे हैं। फजल रहमान,
पूरा का पूरा मोमेंट जो है वो पूरी जो डेमोक्रेटिक अंश है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट में तब्दील कर दी गई है। और जब मैं कहता हूँ सिक्योरिटी थ्रेट, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अरब वर्ल्ड में है, ये डोमेस्टिकली भी है, रीजनली भी है और ग्लोबली भी है। आज देखिए पूरी दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स है, जो पूरी जो एक ग्लोबल जो नारा है वो है सिक्योरिटी का, उसकी फाइट के साथ साथ हो ये रहा है कि जो जेन्युइन वॉइसेस हैं, जो बहुत ही रेडिकल नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, बहुत ही रिलीजियस ओरिएंटेड नहीं है, वो वॉइसेस जो अपनी नेचर में बहुत ही लिबरल, जो बहुत ही मॉडर्न मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के तहत जो गिरवासी उठा रही है, ह्यूमन राइट है, पॉलिटिकल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन सब चीजों को भी दबा दिया जा रहा है।
मैं आजाद हूँ, मेरे लब आजाद हैं, मैं वो हूँ जो आजाद हैं और कभी नहीं डरते, वो रहस्य हूँ जो कभी खत्म नहीं होंगे, उनकी आवाज हूँ जो कभी समर्पण नहीं करेंगे, मैं अंधेरे में चमकता सितारा हूँ, मैं जुल्म करने वालों के गले का कांटा हूँ, वो हवा हूँ जो आग को छू कर आई है, आओ मिट्टी से लोहा बनाएं और इसके साथ एक नया प्यार जगाएं, जो चिड़िया बन जाए, जो देश बन जाए, जो हवा और बारिश बन जाए।
एमिल मातलोती के आजाद लबों ने आंधी उड़ाई, आग लगाई और अरब वसंत के आंदोलन ने अरब को कम से कम तानाशाही और सरकार का फर्क बता दिया। राजनीति, प्रशासन, जिम्मेदारी, लोकतंत्र, शासन, इन शब्दों के मायने समझा दिए, सत्ता और आवाम के बीच का रिश्ता दिखा दिया। अरब वसंत के कम से कम इस योगदान को तो याद रखना ही होगा। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
बसंत का सर्दी में तब्दील होना। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत के विरोध में राजधानी दिल्ली में आज विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में जुटे और उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के वकील से उस रिपोर्ट को पेश करने के लिए कहा है जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये में बदलाव का जिम्मा अमरीका का है। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि पश्चिम के अधिकतर देशों ने चरमपंथी हमले के खतरे और शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए लोगों की बुनियादी आजादी का अतिक्रमण किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। स्टूडियो संभाला था तिलक राज भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।